ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ के इस 25 जून के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। श्री जगन्नाथ की स्नान यात्रा कितने लोगों ने देखी? बस केवल गिने चुने लोग। शास्त्र में लिखा है कि भगवान हर जीव को मौका देते हैं, उनको मिलने का, उनको देखने का, उनके साथ संबंध जोड़ने का, हर तरह का मौका भगवान सबको देते हैं। लेकिन कुछ लोग लेते हैं उस मौके को और कुछ लोग नहीं लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं और भाग्यशाली होते हैं। भाग्य जो होता है ना, भाग्य, वो हम अपने हाथ से बनाते हैं। जब हम कोई भगवान की तरफ से दिया हुआ मौका, अवसर ले लेते हैं तो हमारा भाग्य बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोगों को क्या करना है? इस गेट से उतर के उस गेट में अंदर जाना है, बस। करना क्या है? आप ना स्नान यात्रा का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका फंडिंग भी आप नहीं कर रहे हैं, उसके फूल भी नहीं आप लेके आ रहे हैं, उसका भोग भी नहीं बना रहे हैं, उसका दही दूध शक्कर मधु और घी वो भी नहीं आप लेके आ रहे हैं। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब भक्त लोग व्यवस्था कर रहे हैं उसकी। आपको खाली जाना है। हाथी बेच के मैंने कहानी क्यों बताई आपको? ताकि आपको कुतूहल बढ़े, ऐसा क्या होता है, जरा जाके देखे आएंगे। लेकिन आपने नली पुंकिली सोनारे इकड़ून तिकड़ून गेले वारे, मतलब क्या, यहाँ से गया तो यहाँ से बाहर निकल गया, यूज नहीं हुआ उसका। भगवान ने इतना सुंदर श्रृंगार किया था उस दिन, मतलब भक्तों ने किया था भगवान के लिए। जगन्नाथ जी बलदेव जी दोनों हाथी बने थे, हाथी वेश बहुत सुंदर, देखा आपने कि नहीं देखा? साल में एक बार होता है वो, रोज नहीं होता है, साल में एक ही बार होता है उस सुंदर लीला के उपलक्ष्य में। इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर भगवान को संपर्क करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त है, और केवल मनुष्य को है। कुत्ता बिल्ली के लिए कोई स्नान यात्रा नहीं होती है। कुत्ता बिल्ली के लिए, पंछी के लिए, पेड़ के लिए, एक तुलसी छोड़ के बाकी किसी को स्नान यात्रा नहीं होती, केवल मनुष्य के लिए होती है। और मनुष्य अगर उसको फ्री में मिलने के बाद भी लाभ लेते नहीं हैं तो फिर आगे जाकर उसका नतीजा हमको स्वीकार करना होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्य ने भगवान के साथ में कांटेक्ट नहीं किया तो फिर आपको उसका फल जो है वो क्या है? कौन से जीवन में भगवान के साथ कांटेक्ट नहीं होता है? मनुष्य जीवन छोड़ के बाकी सभी जीवन में भगवान का कांटेक्ट नहीं होता है। अगर आपने भगवान के द्वारा दिए गए मनुष्य जीवन में भगवान से कांटेक्ट नहीं किया तो मनुष्य जीवन छोड़ के बाकी किसी भी जीवन में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एंटर इन एनी अदर लाइफ देन ह्यूमन बीइंग इफ यू डू नॉट कांटेक्ट द सुप्रीम लॉर्ड इन दिस ह्यूमन लाइफ। तो नुकसान किसका है, बोलो किसका नुकसान है? आप सब लोगों का नुकसान है। अगर आपने भगवान के द्वारा दिया हुआ मौका अगर नहीं प्राप्त किया, नहीं लाभ लिया उसका, तो निचली योनि में आपको ही जाना है। इसलिए हम लोग कितने भी थके होंगे, कितने भी बीमार होंगे, कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ ऐसे कि जो बुढ़े हैं अपने आप को बुढ़े समझते हैं, जो अपने आप को बीमार समझते हैं वही नहीं नाचेंगे, बाकी सब नाचेंगे। क्योंकि आपको पता नहीं है कितने परम भाग्य की बात है कि आप लोगों का हरिनाम संकीर्तन के साथ में संपर्क हो रहा है। अनंत जन्म के पुण्य, अनंत जन्म के शास्त्र का ज्ञान, अनंत जन्म के तीर्थयात्रा, अनंत जन्मों के दान पुण्य, अनंत जन्म के यज्ञ तपस्या, ये सब करने के बाद में मनुष्य को भगवान के नाम के संकीर्तन का परिचय होता है, और वो इतना सब करने के बाद में आपको परिचय करने जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है, आपका भाग्य उदय हो रहा है, लेकिन तभी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मानो एक लड़की है जिसको शादी करनी है और माता पिता जो 10 साल से उसके लिए पति ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ये नहीं, ये छोटा सा छोटा है, ये काला है, गोरा है, इसका इनकम कम है, इसके पास घर नहीं है, इसके पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ बहुत सारा चीज़। और फाइनली आपको 10 साल के खोज के बाद एक सुंदर सा राजकुमार तो पढ़ा लिखा भी है, अमीर भी है, दिखने में सुंदर भी है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका शुरुआत में विचार था कि मुझे ऐसा पति चाहिए, और जब वो सामने आता है तो लड़के कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी है, तो दुर्भाग्य है कि नहीं? 10 साल जिसके लिए मेहनत किया उसका फल आपके सामने है, अभी आप उसको ले सकते हो, लेकिन तभी आपको उत्साह नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसको क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य है ना। उसी तरह से 84 लक्ष योनि में भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद, कष्ट भोगने के बाद, मृत्यु की पीड़ा बार बार भोगने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, और एक बार नहीं कई बार मनुष्य बनना पड़ता है। जिन मनुष्य के जीवन में जब हम पुण्य इकट्ठा करते हैं, सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, प्रसाद खाते हैं भगवान का, कभी कभार भक्तों की सेवा कर लेते हैं, ये सब इकट्ठा होकर जब उसका फल प्राप्त होता है, क्या भगवान के भक्तों का संग और भगवान का नाम का परिचय, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने का मौका हो। जब ये आपके सामने है, हमको आलस्य आ रहा है, बोर हो रहा है, हम क्यों नाचें, लोग क्या कहेंगे, हमारा शरीर बहुत बड़ा है तो जब हिलेगा तो लोग हंसेंगे, क्या क्या हमारे मन में विचार आते रहते हैं, मुझे अच्छा नाचने को नहीं आता है तो लोग क्या कहेंगे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो रहा है, कैसे क्यों नाच रहे हैं, क्या पागल हो गए क्या अनेक प्रकार के विचार मन में आते हैं और हम लोग प्रेक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो अंदर जाता है और भगवान के नाम को पुकारता है और नाच करता है, शरीर को भगवान के सेवा में अर्पण करता है नृत्य के रूप में, उसके अनंत पाप कुछ ही क्षण नष्ट हो जाते हैं, और वो दुखी भी होता है तो वो खुश हो जाता है। कितना भी दुखी रहेंगे आप तो मंगलवार के कीर्तन में आके नाचिए, आप उस कीर्तन के नृत्य के बाद में दुखी नहीं रह सकते, ये हमारा चैलेंज है आपके लिए। आप रिसर्च कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, हाँ आप साइकेट्रिक के मरीजों को लेके आइए और यहाँ पर नृत्य करवाइए और उनका एंड में क्या मूड है देखिए, और ऐसा नियमित रूप से करते रहेंगे तो मनोविज्ञान मनोविकार के प्रभाव से भी आदमी मुक्त हो सकता है। आज सवेरे जो हमने श्लोक पढ़ा भागवत का सवेरे की प्रार्थना में, सताम प्रसंगान समवीर संगान, कि भगवान का जो रसायन है ये, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, ये जो प्राप्त करता है इसके हृदय में कोई भी दुख नहीं बचता है। जिसके कान से एक रसायन, रसायन का मतलब क्या है, क्या बताएं उसको अभी आपको, रसायन मतलब क्या, रसायन का मतलब फॉर्मूला, ऐसा नुस्खा, ऐसा हाउ टू से आई डोंट नो, तो ऐसा कीमती लीला, भगवान का मूल्यवान लीला जो है, भगवान के बारे में वर्णन जो है, वो जो सुनता है अपने कान से, उसके हृदय में कभी भी दुख जो है वो निवास नहीं कर सकता है, दुख को वहाँ पर वहाँ से भागना ही पड़ता है। दुख भरी स्थितियाँ आपके आसपास होंगी जीवन में, लेकिन फिर भी उसके द्वारा होने वाला दुख जो है वो आपके पास नहीं आएगा। क्या बताया मैंने आपको, दुख देने वाली स्थितियाँ आपके जीवन में होंगी आसपास ज़रूर, लेकिन उससे होने वाला दुख जो है वो आपको नहीं छू सकता है। ऐसा चमत्कार भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से होता है, और जब हृदय से भगवान के लीलाओं को सुनने के बाद में दुख नष्ट हो जाता है, तब कपिल देव जी कहते हैं तभी जाकर शुद्ध भक्ति का आरंभ होता है। तब तक जो है वो केवल भूल भुलैया और दिखावा है, तब तक भी आप सही भक्ति नहीं। जब मन दुख से मुक्त हो जाता है तो भक्ति का आरंभ हो जाता है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, कपिल देव भगवान कह रहे हैं। हमको गौर से विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और उन कहानियों के बीच में जो सार छुपा हुआ है वो भी हमको समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम जगन्नाथ जी का स्नान के बारे में बताया, और फिर बताया कि भगवान के स्नान के दिन कैसे वो हाथी बने। अभी जो हमने बताया आपको वो प्रत्यक्ष दर्शन करने का भी मौका आपको था, वो छोड़ना नहीं चाहिए। अभी नहीं तो अगले जीवन में, अगले साल में ये मौका आएगा, तभी छोड़ना नहीं कम से कम। और ये लीला जो बताएंगे आपको वो जहाँ हो गई है वो स्थान भी अभी भी विश्व में उपलब्ध है, वहाँ पर भी जाकर आपको इस स्थान का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए आपको मनुष्य का जीवन दिया है। कुत्ता बिल्ली यात्रा नहीं करते, कोई करते क्या? खास कुत्तों के लिए केसरी ट्रैवल्स, अल्सेशियन, ये फलाना फलाना अलग प्रकार के कुत्तों को प्रवेश है, उनको हड्डी मिलेगी भोजन के रूप में सुबह शाम। हाँ, ऐसा कोई जाहिरत नहीं होती कभी, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती कभी, जो भी होती है टूर्स ट्रैवल खाली इंसान के लिए होता है। एनीबडी इज ट्रैवलिंग इन कंपनी ऑफ ऑल डॉग्स एंड कैट्स एंड रैट्स एंड स्नेक्स ऑल गोइंग फॉर पिलग्रिमेज, ऐसा नहीं होता है ना। ओनली फॉर यू, केवल आपके लिए ये। और मनुष्य बनकर अगर आप उसका लाभ नहीं उठाते हैं तो आप इतना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अरे आपके पास पैसा नहीं है, इनकम बहुत कम है, खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके लिए एकदम सस्ते से सस्ती यात्रा बना के रखिए। और अगर आपके पास किसी के पास सही में कोई पैसा नहीं, मुझे उतना सस्ता भरने के लिए भी सही में, नाटक नहीं, एकदम सही में है, तो उसके लिए फ्री भी यात्रा कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप। आप लोग आओ तो सही, ये आपके लिए बनाया है सब। कुछ कुछ लोग दे रहे हैं पैसा कि भाई जो एकदम गरीब लोग हैं जो आ ही नहीं सकते हैं, आने की इच्छा है लो इनके लिए हमारा स्पॉन्सरशिप है, आप आ जाओ। और क्या कर सकते हैं? हाँ, और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते तो बोलो, और भी करेंगे, लेकिन क्या इच्छा है हमारी, आप लोग आओ और भगवान का ये जो मौका है जीवन का उसका लाभ लो। ये सब प्लानिंग करने का क्या प्रयोजन क्या है, इसके पीछे भावना क्या है कि जो गरीब से गरीब लोग भी है उनको भी ये धाम का दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए, जहाँ महाप्रभु जी चैतन्य भगवान कृपा बरसा रहे हैं वहाँ पर जाकर आपको खड़ा रहना है नीचे, लो भाई लो कृपा, स्वीकार करो उसको। लॉर्ड चैतन्य इज शावरिंग इज बरसी, विल टेक यू देयर एंड मेक यू स्टैंड वेर इज शावरिंग, यहाँ पर हो रही है वर्षा, वहाँ खड़े रहेंगे आप भीग जाएंगे उसके अंदर, तो दोबारा इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा आपको, इतनी शक्ति है। हाँ, चार पाँच दिन की अगर यात्रा करेंगे तो क्या महिमा है उसका, कि जो वहाँ पर एक बार पहुँचेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, और ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन उसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत उठेगा और इस जीवन के अंत में वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। कॉस्ट कितना है इसका? 1400 रुपया, ज़्यादा महंगा नहीं है। अनंत जन्मों का जो कष्ट है नष्ट करने के लिए इतना सुंदर मौका है। 2015 में जगन्नाथपुरी में यात्रा जाएगी आपके लिए, इसी कथा आपको अभी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उत्सव के वातावरण में बता रहे हैं आपको। हाँ, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, एक ही ऐसे भगवान हैं जो आपके लिए मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं, इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। जैसे भक्ति विधान में नाना विध प्रकार की योजना बनती रहती है कैसे कैसे लोगों को भगवान के पास लाया जाए। हाँ, अलग अलग आइडिया बनाते रहते हैं, इस तरह से उस तरह से किस तरह से, ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशयेत, आप लोगों का और सब लोगों का मन कृष्ण में कैसे लगा रहेगा, जानते हुए न जानते हुए, प्रत्यक्ष रीति से अप्रत्यक्ष रीति से कुछ कुछ योजनाएं बना रहते हैं, वैसे हमारे भगवान भी रहते हैं, वो सोचते रहते हैं अभी क्या करूं, अभी समय ऐसा है तो क्या करूं, कैसे सब लोगों को मेरे पास लेके आऊं, खुद अभी मैं जगन्नाथ बन के आऊँगा और ऐसा सिंपल बना दूंगा, ज़्यादा कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, खाली आओ मुझे देखो बस, इतना देखा ना फिनिश्ड, खाली आओ मुझे देखो तो मेरा प्रसाद पाओ बस, इतना करेंगे तो इस टाइम पे फॉर्मूला बना के रखा है, इतना करेंगे सब लोगों को फ्री कर दो, जो भी बंधे हुए हैं उनको फ्री कर दो। हाँ, समझो संजय दत्त को बताया आपने आज जाके, बस एक बार जगन्नाथपुरी जाओ, दर्शन करो और प्रसाद पाओ, आपका सारा जितना भी आपको सजा हो गई है कैंसिल हो जाएगी। जाएगा कि नहीं जाएगा वो? लेकिन उसके लिए जेल में जाने की जरूरत नहीं, समझने के लिए। जेल में जाकर फिर जेल की सजा से मुक्त होने की जरूरत नहीं है। बिना गुनाह किए, बिना सजा प्राप्त किए, बिना जेल गए, ये सारी प्राप्ति हो सकती है आपको। ये जरूरत नहीं कि बीमार पड़ेगा आदमी फिर भगवान के पास जाएगा, फिर बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर उसको विश्वास हो जाएगा हाँ भाई भगवान कुछ चीज़ है। लेकिन बीमार पड़ने की जरूरत नहीं आपको अगर भगवान के चरणों में आप रहते हो तो। मैं कौन सी बीमारी की बात कर रहा हूँ? भव रोग की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में रहते हुए आप लोगों को डेंगू मलेरिया तो होगा ही, उससे आप टाल नहीं सकते हैं। शुद्ध भक्त को भी संत को भी हो सकता है। मैं उस रोग की बात कर रहा हूँ जो रोग आपको बार बार यहाँ पर खींच खींच के लेके आता है, डेंगू होने के लिए, मलेरिया होने के लिए। हाँ, मैं उस रोग की बात कर रहा हूँ, जन्म मृत्यु के रोग की बात कर रहा हूँ। जो रोग की वजह से आपको मलेरिया डेंगू हो रहा है, उसका मूल कारण वो है शरीर जो धारण करते हैं बार बार। उस शरीर को धारण करने का जो रोग है वो नष्ट हो सकता है एक ही बार, वंस एंड फॉर ऑल, अगर हम भगवान की कथा को ध्यान से सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा मनोरंजन है, हाँ ड्यूटी से भी एक घंटा फ्री मिल रहा है पगार के साथ ऑन ड्यूटी, हाँ बोर भी हो रहा है तो जाके बैठ जाओ, सुनो ना सुनो क्या फर्क पड़ता है, घंटा तो मिल रहा है आराम से ऑन ड्यूटी। ऐसा नहीं, अगर हम ऑफ ड्यूटी रखेंगे तो आप लोग आएंगे ही नहीं, ऑफ ड्यूटी कौन आएगा? इसलिए अपने जेब से नुकसान करके आपको ऑन ड्यूटी बुलाया है, क्योंकि हम जानते हैं ऑन ड्यूटी बुलाकर आप लोग यहाँ बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हमारा नुकसान भी हो रहा है उससे। फिर भी अगर आपका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है तो हमें वो चाहिए, इसलिए प्रोग्राम बनाए। आप सोचो जरा, ऐसा कोई संस्था है क्या जिसमें ऑन ड्यूटी लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं, नुकसान करते बिजनेस का? बोलते ऑन ड्यूटी क्या, आपका ड्यूटी के बाद भी आपको खींचेंगे यहाँ पर, बिना ओवर टाइम दिए हुए आपसे काम करवाएंगे और बिजनेस करेंगे और खुद पैसा कमाएंगे। ऐसी संस्थाएं दुनिया में बनी हुई है, हाँ किसका किसका नाम लूँ मैं? इसलिए कभी कभी जब हमारे पर बहुत कृपा बरसती है तो हमको उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं इसमें भी जरूर कुछ कुछ ना कुछ उनका चाल है ऐसा लगेगा आपको। ऐसा कौन करता नहीं है, और ये लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चाल है उनके पीछे, कुछ सोच रहे हैं इसके पीछे, कुछ योजना है उनकी। एक ही योजना है, आप लोगों को भव रोग से बंधन से मुक्त करके भगवान के चरणों में डालने की योजना है। जरूर ये भी रहस्य है, क्योंकि तो बाहर के लोग सोचते होंगे अरे कैसे करते हैं लोग, रिलायंस वाले या तो हिंदुजा वाले, ब्रिज कैंडी वाले सोचते होंगे कैसे करते हैं ऑन ड्यूटी सब लोग को बिठाते हैं। देखो कम से कम 80 लोग बैठे हैं, 80 लोगों का एक घंटा मतलब कितना नुकसान हो गया उनका, गणित करते वो, क्योंकि उनका खाली एक ही उद्देश्य होता है, ओनली वन पर्पज, मनी मनी एंड मनी, नथिंग एल्स। यहाँ पर तो आराम से बैठकर डॉक्टर शानबाग जगन्नाथ की कथा कर रहे हैं, हरी बोल। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि भगवान के विषय में एक बार भी सुनने पर वो आपका सुनना जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एकदम जब आपको सबसे अधिक जरूरत है तो आपको याद आएगा वो, जब आप सबसे बड़े संकट में होंगे तब आपको याद आएगा, तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। ऐसा ये रसायन है कृष्ण भक्ति और कृष्ण भगवान का लीलाओं का श्रवण। तो ऐसे अद्भुत भगवान है ये, हाँ इनको कोई जरूरत नहीं अपने धाम छोड़कर आने की, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर जन्म मृत्यु चीटिंग फ्रॉड हाँ अतिरेक क्या क्या इधर होते रहता है, फ्लड्स और क्या क्या भयंकर तूफान भूकंप, सब लुच्चे लोग, पॉलिटिकल लोग, करप्ट लोग, पापी लोग यहाँ रहते हैं, क्यों आए वहाँ पर वो, क्या जरूरत है उनको? उनके धाम में तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे सुंदर सुंदर लक्ष्मियाँ गोपियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं, देवता लोग उनके भक्त लोग उनकी गुणगान करते रहते हैं, सब जगह सुगंध रहता है, कोई शत्रु नहीं, कोई चालू नहीं, कोई लुच्चा नहीं वहाँ पर, सब पवित्र लोग रहते हैं। इनका संग इनका वातावरण छोड़ के कौन आना चाहेगा यहाँ पर? लेकिन एक बात ऐसी, इसका नाम है करुणा। करुणा ऐसी एक वस्तु है कि करुणा के वश सारा कष्ट सहन करते हुए भी भगवान यहाँ पर आते हैं। करुणा मीन्स कंपैशन, हृदय की कशिश जो होती ना प्रेम, उसकी वजह से इतना सारा आनंद छोड़कर भी भगवान इस दुनिया में आते हैं। पुजारी कितनी पास में आके सेवा करता है ना भगवान की, तो पुजारी जब पास में आके सेवा करता है तो पुजारी के शरीर की बदबू भगवान को आती होगी ना, वो भी सहन करते हो क्योंकि मेरी सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। जैसे एक माता के शरीर के ऊपर समझो बच्चे ने पेशाब कर दिया या टट्टी कर दिया तो माँ बुरा नहीं मानती है, अपने को भी साफ करती है, बच्चे को भी साफ करती है, और एक बार नहीं अनंत बार करती है, क्योंकि प्रेम है वो प्रेम, इसकी वजह से गंदगी भी सहन कर लेता है आदमी। वैसे तुम्हारे हमारे ऊपर भगवान को प्रेम है, इसलिए भगवान अपना धाम छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं ऐसे अद्भुत रूप के अंदर। कैसे करुणा है सोचो आप। लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी बताई क्या, वो कैसे भगवान प्रकट हो गए, आप लोग नहीं आए होंगे ना कौन लास्ट टाइम कितने लोग आए थे बताओ, कौन सी कहानी बताई लास्ट टाइम? अच्छा, तो एक बार देखो, अभी अगर रिपीट हो गई तो भी अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं रोहिणी माता सब रानियों को, भगवान के रानियों को भगवान की कथा सुना रही थी, और उन्होंने बोला था कि अरे देखो ऐसा है, जब भी जैसे भगवान की कहानी वृंदावन की कहानी चालू होगी ना तो तुरंत ये उठेंगे रथ को लेकर जाएंगे वृंदावन को, लौट के नहीं आएंगे। क्या चाहते हो आप, उनकी कथा सुनना है और उनको खो बैठना है कि उनको आपके साथ में रहना है, या आपको उनके साथ में रहने की इच्छा है? तो नहीं नहीं हमको उनके साथ रहना है। एक दिन इतना ताज़ा तीव्र इच्छा हो गई कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ऐसा योजना बनाएंगे कि वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो जाएंगे भी नहीं और हम कथा भी सुनेंगे, ऐसा योजना बनाते हैं। तो सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, बोला कि जैसे दूर से दिखाई पड़े ना तो खटखटाहट कर देना दरवाजे पर, हम लोग कथा बंद करके चले जाएंगे, फिर वो वहीं रहेंगे, हम लोग भी वहीं रहेंगे। लेकिन अगर समझो नहीं आते वो और हमारी कथा होती है तो अच्छा ही बात है। तो भगवान की कथा आरंभ हो गई, बाहर खड़ी सुभद्रा सुन रही उस कथा को, वो सुनते ही बेहोश हो जाती है। तो जिसको खड़ा किया खटखटाने के लिए वही बेहोश हो गया, अभी कौन खटखटाएगा, और तो कोई रखा नहीं था उधर। कुछ देर बाद निश्चित रूप से कृष्ण बलराम वहाँ पर आए ही आए, जैसे कहा गया था कि वो आते हैं जहाँ पर उनकी कथा होती है वहाँ पर वो आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर भी आते हैं, जहाँ पर भी उनकी कथा होती है वहाँ पर वो उपस्थित रहते हैं, और उनके अदृश्य उपस्थिति का आम सबको लाभ होता है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कृष्णा एंड हिज पास टाइम्स, कृष्णा कम्स देयर इन विजिबल फॉर्म एंड हिज इनविजिबल प्रेजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ यू। दैट इज वाई वी हैव टू रिसाइट कृष्णस पास टाइम्स। कृष्ण भगवान का चरित्र जो है उसका गुणगान करते रहना चाहिए। अगर आपको नियमित रूप से भगवान का संग मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा है आपकी, तो आपको नित्य रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन और गुणगान करते ही रहना चाहिए, जिसके द्वारा आपके आसपास उनका संग आपको प्राप्त होता ही रहेगा। यही भक्तों के जीवन का फॉर्मूला है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। मेरे भक्त की व्याख्या क्या है, अर्जुन ने पूछा, भगवान कहते हैं मेरा भक्त वो है वो हमेशा मेरा ही गुणगान करते रहता है, सततम हमेशा के लिए कीर्तयन्तो माम मेरा गुणगान वो करते रहता है, और मैं उसके साथ हमेशा बने रहता हूँ जब वो मेरा कीर्तन करते रहता है। जैसे ही आ गए भगवान, उन्होंने भी देखा अरे मेरे बहन तो ऐसे ही बेहोश होकर पड़ी है और दरवाजे बंद है, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, तो भी कान लगाते और कान लगाकर रोहिणी माता के मुख से अपनी कहानी बचपन की सुनने लगते हैं। और जैसे ही उनके मन में बचपन की याद आने लगती है तो वो भी ऐसे, क्या बताऊँ आपको, उसको कहते हैं अष्टविकार। अष्टविकार का मतलब उनके शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, उनका शरीर में रोमांच होता है, उनका शरीर गदगद होने लगता है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो बेहोश से होने लगते हैं ऐसे। और कुछ देर बाद जब उनकी वृंदावन की कहानी एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो ये कृष्ण बलराम बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बड़ी बड़ी कान तक मुस्कान लेकर सुभद्रा के दोनों साइड में गिर जाते हैं। अति आनंद की अवस्था है, बेहोश नहीं हो गए वो, अति आनंद की अवस्था है वो, उसको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ का मतलब क्या होता है, एक खंभे की तरह वो ऐसे कड़क हो जाते हैं, ऐसे ही स्थिर हो जाते हैं आनंद में। तो सुभद्रा बीच में, कृष्ण बलराम बाजू में ऐसे पड़े हुए हैं, तो नारद मुनि जी आ रहे हैं, नारद में देखते हैं अरे ये क्या दर्शन है, तो नीचे आके गौर से देखते हैं, अरे तो हमारे कृष्ण भगवान है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी मुस्कान, हिल नहीं रहे, डुल रहे, हाथ है लेकिन पंजा नहीं है, पैर तो है ही नहीं, ऐसा बैग की तरह पेट हो गया उनका, हाँ सुभद्रा का तो हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, अरे ऐसे कैसे अवस्था हो गई है। ये सोच ही रहे कि ऐसे कैसे है, उनके हृदय में आनंद की लहरें उमड़ रही है, जो हमेशा उमड़ती रहती है नारद मुनि के मन में, लेकिन आज इस प्रकार की आनंद की लहरें उमड़ रही है जो पहले कभी नहीं उमड़ी थी। उनको भी समझ में आया कि मैं तो प्रेम भगवान पर करता हूँ, लेकिन आज जो प्रेम का मुझे अनुभव हो रहा है वो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और क्यों हुआ, इनको इस रूप में देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि इनको देखते रहे और देखते रहे और देखने से इतना आनंद हो रहा है, तो बहुत देर तक उन्होंने आनंद लिया उनको देखने का। नेत्र उत्सव, फेस्टिवल ऑफ आईज, देखते रहे देखते रहे देखते रहे। उसके बाद में उन्होंने भगवान को तीनों को स्पर्श किया, स्पर्श करने से भगवान का शरीर सबका पहले जैसे हो गया, सुभद्रा जी पहले जैसे हो गई, बलराम कृष्ण भी पहले जैसे हो गए और प्रसन्न होकर खड़े हो गए, दर्शन दिया उनको खड़े होकर। मैंने आपको क्या बताया था, कंपैशन, करुणा, ये करुणा कैसे होती है, समझो आपको आज अचानक किसी ने जलेबी और रबड़ी खिलाया, समझो आपको खिलाया, तो आपके मन में लगेगा वाह क्या बढ़िया दिन है, और जलेबी खाता हूँ और रबड़ी दो, बहुत आपने पेट भर के खाया, और एक बात है कि आपने छोड़ दिया, अच्छा हुआ आनंद लिया घर पे गए। लेकिन अगर कोई माँ होगी और उस माँ को अगर जलेबी रगड़ी खाने को मिला, तो एक टुकड़ा भी मुंह में डालने के पहले वो अपने बच्चों की याद करेगी कि मुझे बच्चों को भी देना है इसको, याद करेगी कि नहीं करेगी, अरे मैं अकेले खा रहे हूँ यहाँ पर बैठ के, इतना अच्छा बढ़िया खाना, काश मेरे बच्चे मेरे साथ मिले तो कितना अच्छा था। उसको कहते हैं प्रेम, खुद को आनंद मिल रहा है वो मिलने के पहले से ही जिन पर हम प्रेम करते हैं उनको वो आनंद बांटने का सोचते हैं हम लोग। वो तो एक माँ है जिसका दो तीन बच्चों का एक परिवार है छोटा सा, वो खाली उतना ही सोचती है, लेकिन नारद मुनि एक ऐसी माँ है जो पूरी दुनिया का सोचते हैं। जब उन्होंने इतना आनंद लिया तो सबसे पहले करुणा के वश में उन्होंने दुनिया भर के हम सब लोगों का विचार किया, ना हमारे उनके पहचान नहीं है अभी तक, वो जानते हैं हमको, हमने जानते हैं उनको, ये सारी पहचान ना होते हुए भी इस दुनिया में जितने करोड़ों अब्जों 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 जीव हैं, तो मनुष्य है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई पंछी है, ये हर प्रकार के जितने जीव हैं, ये सबके बारे में उन्होंने सोचा कि उनका उद्धार कैसे हुआ, कैसे होगा, कैसे करूँगा उनका उद्धार मैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इनको केवल देखा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर मैंने इनको केवल देखा और मुझे इतना प्रेम का अनुभव हुआ, तो अगर यही रूप अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, अवतार लेंगे और लोग उनको खाली देखेंगे, तो हो सकता है कि जो प्रेम मुझे अनुभव आया वो सबको मिलेगा, और प्रेम मिलेगा सबको तो कोई यहाँ नहीं बचेगा, सब भगवान के धाम में चले जाएंगे। और उस करुणा के वजह से नारद मुनि ने भगवान से वहीं पर वरदान मांगा। अभी अभी उन्होंने जलेबी रबड़ी खाई है, लेकिन बाकी लोगों को भूले नहीं वो, उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया कि ये जलेबी रबड़ी हर रोज़ सब लोगों को मिलते रहने चाहिए, उसका उन्होंने इंतज़ाम किया। इसको कहते हैं संत। हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है अच्छा किया आपने, बहुत दो चार रबड़ी पैकिंग करके दो घर में जाके भी खाएंगे, इतना ही बोलेंगे, यही हमारा विचार होता है, लिमिटेड नैरो। लेकिन नारद मुनि ने एक वरदान मांगा और इस वरदान के फल के रूप में आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर ऐसा इंतजाम किया कि आप सब लोग इस जलेबी रबड़ी को अनंत काल तक खा सकते हैं। इसको कहते हैं संत। नारद मुनि क्या बोला कि भगवान मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपकी ऐसा कैसा हो गया आज। उन्होंने कहा जब मैं वृंदावन के बारे में सुना तो मेरी यह अवस्था हो गई, मम्मी ने कहा कि आपकी अवस्था तो ऐसी होगी, मेरी अवस्था कैसे होगी जानते हैं आप? मुझ में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ कि पहले कभी अनुभव नहीं किया था मैंने, तो मैं आपसे आज वरदान मांगता हूं कि इसी रूप में मैं आपका पृथ्वी पर दर्शन करना चाहता हूं, ताकि मेरे जो भाई बंधु हैं सब भरी दुनिया में, वो सब लोग आपको आके देखेंगे और केवल देखकर जो प्रेम मैंने आज अनुभव किया है उसका अनुभव करते रहेंगे और दुनिया के जन्म मृत्यु के बंधन से भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो नारद मुनि का ये प्रेम और करुणा देखकर तुरंत भगवान ने कहा तथास्तु, जरूर आएंगे। इसीलिए भगवान इस रूप में आए हैं। और इसका एक और भी रहस्य है कि ये रूप में क्यों आए हो। वो द्वारका में रहते थे। एनीवेज पहले इसके बारे में बताते हैं कि ये फिर पृथ्वी पर उसके बाद में प्रकट हुए, समुद्र में एक लकड़ी के रूप में उनका अवतार हुआ, बहुत दिव्य प्रकाशमान, बड़ी लंबी चौड़ी दारू ब्रह्म कहते हैं उसको। दारू ब्रह्म का मतलब है लकड़ी, वुड, डिवाइन वुड। उसके रूप में वो समुद्र में अवतार हुआ उनका, समुद्र में पूरा प्रकाश आ गया। इंद्रदुम्न राजा को खबर मिली कि बड़ी सुगंध आ रही है समुद्र से। नारद मुनि ने बताया उनको, हाँ वो आए हुए हैं, भगवान स्वयं दारू ब्रह्म के रूप प्रकट हो रहे हैं, जाइए आप उनको ले आइए। तो फिर राजा इंद्रदुम्न ने उनको समुद्र से बड़े प्रयास के बाद बाहर लाया और फिर वेदी पर उनको स्थापन किया। फिर उसमें एक बुड्ढा आदमी आया, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। वो जो बुड्ढा आदमी था वो विश्वकर्मा, जो भगवान का देवताओं का जो है ना आर्किटेक्ट, उसका अवतार है। वो स्वयं विश्वकर्मा भगवान के महल बनाता है देवताओं के लिए, देवताओं के लोक में। वो बुड्ढा आदमी बनने का बनकर आया वहाँ पर, भगवान की इच्छा थी। उसने कहा राजा ये लकड़ी जो है ना इसका मूर्ति में बनाऊंगा। बोला अच्छी, भगवान ने इनको भेज दिया। बोला बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति डिवाइन लगता है, बहुत दिव्य लगता है। तो उन्होंने कहा मेरी एक ही कंडीशन है, मैं जब ये मूर्ति बनाऊंगा तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं कमरा बंद करूंगा और अंदर बनाऊंगा और मेरे अंदर की आवाज़ भी बाहर किसी को नहीं आएगी, लेकिन कोई आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसी समय गायब हो जाऊंगा, आधा होगा पूरा होगा मुझे मालूम नहीं, मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सिंपल कंडीशन है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको चिंता मत करना। और उन्हें प्रयोगशाला बनाई, पूरी कमरा बनाया, उसके अंदर ये लकड़ी रखी, पूरा बंद कर दिया, सब जगह से बंद करके बुड्ढा अंदर गया अपना साधन लेके। वो तोड़ने का होता ना सब, लकड़ी वकड़ी का हथौड़ा और चिजिल सब लेके गया वो। एक दिन हो गया, राजा बहुत उत्सुक थे, एक दिन हो गया तो आवाज़ ही नहीं आ रहा अंदर से कुछ। अभी आपकी उम्मीद क्या है अंदर से कुछ ठाक ठोक ठाक कुछ आएगा ना आवाज़, कुछ भी नहीं आवाज़ आ रहा है, ना घिसने की आवाज़ है, तोड़ने की आवाज़ है, ना कुछ भी आवाज़। कारपेंटर का कितना आवाज़ आता है, इधर कथा में भी डिस्टर्ब होता है उसको, पांचवें माले पे ट्रा ट्रू ट्रू ट्रा ट्रू बंद करो बंद करो, ऐसा कितना डिस्टर्ब होता है उसका। ये तो उसके पास जाने पर भी आवाज़ नहीं आ रही है, इतना बड़ा बुढ़ा आदमी है, इतना बूमर हुआ आदमी है। तो राजा ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, सात दिन हो गए, 15 दिन के बाद लगा कि बुढ़ा शायद मर गया होगा। तो अंदर अरे कुछ खाना नहीं खाया उसने, हमने भोजन देने का प्रयास किया, अभी भोजन भी नहीं खा रहा है, ना कुछ आवाज़ आ रही है, हार्ट अटैक आ गया क्या उसको? चिंता है, रोज आके पत्नी को बोलता है गुंडीचा देवी को कि ऐसा ऐसा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे राजा हो, आपने उनको कंडीशन तो मान लिया लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं की आपने उनकी, तुरंत आपने हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन आपने सोचा नहीं कि वो आपका मेहमान है, उसका खाना पीने का इंतजाम भी करना चाहिए आपको, वो तो आपने किया नहीं। तो उसकी टेंशन और बढ़ गया, अरे हाँ मैंने तो गलती किया, 15 डेज तक कुछ खाना नहीं खाया तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा, 15 दिन में उसको रहा नहीं गया, उसको दरवाजा तोड़ के अंदर गया वो। तो क्या हो गया बुड्ढे को, तो क्या देखते हैं 3 ऐसी आधी आधी बनी मूर्ति तो रखी हुई है और कोई नहीं अंदर, ना बुड्ढा है, ना कोई जवान आदमी है, ना कोई नहीं। जैसे बताया था वैसे बुड्ढा जो आया था मूर्तिकार वो गायब हो गया। तो राजा को बहुत दुख हुआ, कितना दुर्भाग्य हूं मैं, उसने कहा था डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर मैं पत्नी की बात सुनकर डिस्टर्ब हो गया और उसका प्रण तोड़ दिया मैंने। अभी इतनी भगवान इतने प्रकट हो गए, इतनी जंग समुद्र से और यहाँ पर आए, वो वहाँ से आया भी था आदमी, वो जिसे दिव्य व्यक्ति लग रहा था, भगवान का व्यक्ति लग रहा था, उसने तो हाँ भी कर दिया था, हमने सब कुछ हाँ कर दिया, फिर मेरी मूर्खता की वजह से ये सब प्लान भी फेल हो गया। अभी बहुत छाती पीट कर राजा, जो भगवान का परम भक्त था, वो रोने लगा। वो उसी समय नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजा इंद्रदुम्न, आप शोक मत करना, यही भगवान की इच्छा है, उनको इसी रूप में आना है, ये मूर्ति आधी नहीं है, ये पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे पूरी हो गई, ये तो आधी है, तो हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ है नहीं। तो नारद मुनि ने उनको वो कहानी बताई जो मैंने आपको पहले बताई, रोहिणी माता वाली, कि कैसे रोहिणी माता कथा सुना रही थी और कैसे ये दोनों तीनों गिर गए बेहोश होकर, कैसी उनकी अवस्था हो गई। वो कहानी नारद मुनि ने उनको सुनाई उस समय, जो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। वो यही रूप था। तो जो बूढ़े मूर्तिकार आए थे, वृद्ध मूर्तिकार, उन्होंने मूर्ति पूरा किया है, आधा नहीं किया है, डोंट वरी, ऐसे करके राजा को सांत्वना दिया। तो राजा समझ गए इसके रहस्य को, तो शांत हो गए। फिर उसके बाद में नारद मुनि को राजा ने कहा कि हमको तो इस मूर्ति की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को लाना चाहिए, चीफ गेस्ट, जैसे हमारा हार्ट सेंटर को खोलने के लिए हम किसको लेके आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुराना अब्दुल कलाम, हाँ, हार्ट सेंटर खोलने के लिए। तो वैसे इतने भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जो पूरे सृष्टि के चीफ हैं उनको लाना चाहिए, एक्स भी नहीं, करंट ब्रह्मा जी। ठीक है, चले गए ऊपर। बहुत उनको समय लगा ऊपर जाने के लिए। ऊपर गए तो ब्रह्मा जी कुछ मीटिंग में बैठे थे, होता है ना ऐसे, अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन फिर भी मीटिंग बिजी थे। तो क्या मीटिंग थी वो, तो भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, रुको, भगवान से प्रार्थना हो रही है, तब आपको मिलेगा टाइम। प्रार्थना हो गई, ध्यान हो गया उनका पूरा, तो बाहर आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा, चलो पृथ्वी पर चलना है, भगवान की मूर्ति का स्थापना करना है। तुरंत राजी हो गए, अपने राजहंस पर बैठ गए, कमल पर, और आ गए नीचे। जब तक नीचे आए तभी पृथ्वी पर कई पीढ़ियाँ, हजारों पीढ़ियाँ बीत चुकी थी, क्योंकि वहाँ का टाइम का कैलकुलेशन, यहाँ का टाइम का कैलकुलेशन जो है वो अलग अलग होता है। कई पीढ़ियाँ बीत गई, कई पीढ़ियाँ, हजारों पीढ़ियाँ। कोई राजा था वहाँ पर, वो राज्य कर रहा था, और ये सब लोग आए आकाश से। जैसे ही इंद्रदुम्न राजा अपना राजा के रूप में जाकर तैयारी करने लगा, तो राजा ने आक्रमण किया उसके ऊपर, जो उस समय राजा था। तो उस समय एक था काकभुशुंडी, कौवा था, एक कौवा, उसकी लंबी कहानी आती है गर्ग संहिता में, एक वेदशिरा और यज्ञशिरा नाम के दो ऋषि थे, उन्होंने झगड़ा किया था। तो झगड़ा करके उन्होंने एक दूसरे को शाप दे दिया। एक ने कहा, तू सांप बन जा, तो वो बन गया आगासुर। दूसरे ने शाप दिया कि तू कौवा बन जा, तो वो बन गया काकभुशुंडी। फिर भगवान ने आकर बताया कि ये मेरी योजना थी, ये तुमको भगवान के हाथ से मरना था, इसलिए तुम आगासुर बनोगे और तुम कौवा बनोगे, लेकिन तुम भगवान का ही गुणगान करोगे, कौवे जैसे बकबक नहीं करोगे। तो काकभुशुंडी का ऐसा वरदान है कि तुम मरोगे भी नहीं, युग युग में जीवित रहोगे और तुमको सब याद रहेगा, पूरा इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मालूम रहेगा आपको। तो वो काकभुशुंडी वहाँ पर प्रकट हो गए, और वो काकभुशुंडी ने उस नए राजा को, राजा इंद्रदुम्न के बारे में जानकारी बताई कि यह कौन है और तुम कौन हो, उनका तुम्हारा रिश्ता क्या है। तब जो आक्रमण किया राजा, वो नमस्कार किया उसने राजा इंद्रदुम्न को, और अपने राजा के रूप में स्वीकार किया कि तुम ही मेरे राजा हो, मैं तो गलत फहमी में था, नारद मुनि की कृपा से, मैं काकभुशुंड की कृपा से मैं भी समझ रहा हूँ कि तुम कौन हो। और उसके बाद में जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी हुई थी ना, वो प्रत्यक्ष इंद्रदुम्न से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मैं इस पृथ्वी पर आया था, अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा आ रही है, उसी दिन आप मेरा पब्लिक स्नान करना। प्रत्यक्ष जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को ये बात आदेश दिया था, इसीलिए पब्लिक में जगन्नाथ जी का स्नान होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जो इस संडे के दिन था। फिर भगवान ने स्नान करवाया अपना पूरा दिन तक, ब्रह्मा जी के पुरोहित के रूप में राजा इंद्रदुम्न, नारद मुनि, बड़े बड़े देवता सब लोग वहाँ पर थे। बड़ी धूमधाम से भगवान का प्रतिष्ठापना किया गया। इसके पहले, जाने के पहले, राजा इंद्रदुम्न ने वो मंदिर बना के रखा था, लेकिन इतने युग बीत गए, इतने पीढ़ियाँ बीत गई कि वो पत्थर का मंदिर था वो भी जमीन के अंदर ढस गया, वो और आज आप लोग जो मंदिर देखते हो, इतना ऊंचा भव्य मंदिर है, वो केवल कहते हैं मंदिर का केवल 1/10 हिस्सा है वो जो आपको नजर आ रहा है। असली मंदिर जो 9 हिस्से है उसके, जमीन के अंदर पहाड़ के अंदर है, और राजाओं ने उनको खोद कर उसका शोधन भी किया है, तब उनके अंदर बहुत धन मिला उनको, लेकिन डर भी लगा उनको, बहुत भयंकर आवाज भी आई अंदर से, तुरंत उसको बंद किया गया, कभी कभी खुलना नहीं, इसको ऐसा आदेश किया गया, गजपति राजा ने आदेश निकाला कभी भी इसको टच नहीं करना है, इसके भुयार कभी खोलना नहीं है कभी भी। आज भी केवल 1/10 हिस्सा जो है वो पहाड़ के ऊपर है, बाकी सारे 9 हिस्से जो है वो पहाड़ के अंदर है, क्योंकि इतनी सारे हजारों पीढ़ियां बीत गई तो पृथ्वी ऐसे उस पर छा गई, तो उसके ऊपर भी जगन्नाथ जी को स्थापन किया गया जो पहले बनाया गया था। आई ना बात समझ में आपको, ऐसा दिव्य उनका प्रकटीकरण है, इस दिव्य रूप से प्रकट हो गए वो, और हमको फिर भी टाइम नहीं उनको मिलने के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। इतना सारा चमत्कार करके भगवान आपके लिए प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं भाई हवा जहाज में बैठे पुष्पक विमान के अंदर और सीधे यहाँ प्रकट हो गए, ऐसा नहीं, बहुत चमत्कारिक लीला किया उन्होंने, ऐसे वैसे तो मैंने बताया ना आपको कितना कारण उसके पीछे, क्यों ऐसा करते वो, ताकि हम लोगों को वो सुनने में इंटरेस्ट आए। अगर हमने कहा कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेन का बुकिंग किया और दिल्ली में उतरा और गया तुम्हारे घर पे, तो उसमें क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन बताऊंगा टिकट में कितना गर्दी था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैं वैसे किया, फिर उसको पटाया, फिर उसको किया, फिर अंदर गया, फिर मेरा टिकट फिर भी कन्फर्म नहीं था, फिर मैं टीसी को मिला, फिर उसको मैंने प्रसाद दिया भगवान का, फिर भगवान की माला पहनाई उसको, और उसको बाजू में जाकर बहुत प्रेम से बातें की मैंने, तो जाकर उसको 2 घंटे के बाद मेरे को बर्थ दिया उसने मुझे, फिर मैं रात की रोटी पाई, फिर मैं रात भर सोया नहीं कब दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली पहुंचा तो इतनी बाढ़ आ गई थी उधर, ठंडे से धुंध पहुंच गई थी, गाड़ी रुक गई थी, फिर हम लोग मथुरा में उतर गए, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, फिर वापस कुछ देर के बाद धुंध के बाद में प्रकाश आया सूर्य का, फिर गाड़ी चालू हो गई, फिर हम पहुँचे, बहुत भूखे थे, ऐसा सब कहानी बना के बोलेंगे वाह इतना मेहनत किया आपने दिल्ली पहुँचने के लिए तो रोचक हो गया ना कहानी पूरी, क्या क्या हो गया ट्रेन के अंदर, अरे खड़े होने को जगह नहीं थी, सब लोग ऊपर ऊपर से बस के ऊपर चल के जा रहे थे, आप बोलेंगे वाह क्या कहानी में रोचकता है। ऐसे भगवान अगर वहां से विमान बैठे यहाँ पर आ गए, तुमको दर्शन दिया, तो क्या बड़ी बात है उसमें, लेकिन वो इतनी बड़ी कथा के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, ताकि आप लोगों को कथा सुनकर उनको मिलने का दिल करेगा ना, अरे कैसे भगवान तेरा देखना चाहता हूं मैं, ऐसे अद्भुत शरीर क्यों बना के आया है, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बना के आया है इस शरीर से, तो हमेशा तो मुरली बजाते हो, लेकिन अभी मुरली नहीं बजाएंगे, अभी कुछ अलग करेंगे, लेकिन ऐसे कहा गया है कि वो जो भक्त जो होता है वो अगर भक्ति भाव से जगन्नाथपुरी पहुंचता है तो उसको मुरली बजाते हुए जगन्नाथ दिखाई पड़ते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो प्रेम का अंजन आंखों में लगाकर भगवान का दर्शन करता है प्रेम से भरे आंखों से, उनको ये ऐसे खड़े हैं लेकिन वो मुरली बजाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको जरा मार्केट में जाकर वो प्रेम का अंजन खरीदना पड़ेगा, ऑइंटमेंट लेकिन मार्केट में कौन सा मार्केट है, वो भक्तों के संघ का मार्केट है ना, उसके अंदर वो अंजन मिलता है और वो आप प्राप्त करोगे भक्तों के संघ के मार्केट से, और वो मिलेगा आपको और लगा के जाएंगे तो फिर वो मुरली बजाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये सब हृदय की बात है, हृदय की बात है, वो जानते हैं, और वो जिनके हृदय के अंदर वो प्रेम है उनको वो मुरली बजाते हुए दर्शन भी देते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी बहुत सुंदर, अतिशय इतने आनंद की बात है उनको देखना, केवल देखने के लिए इतने लोग आते हैं, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई उत्सव नहीं है जहाँ बिना इन्विटेशन 10 लाख लोग एक दिन में हाजिर हो जाते हैं। नो इन्विटेशन कार्ड्स, नोबडी टेल्स यू दैट यू हैव टू कम, कोई नहीं बुलाता है उनको, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड के रिकॉर्ड के अंदर इसका रिपोर्ट दिया गया है कि बिना किसी इन्विटेशन के एक दिन में 10 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अरे अगर वो पत्थर के बने होते तो लोग क्या पागल है क्या उनको देखने के लिए, उनका फोटो देखेंगे टीवी पर देखेंगे क्या है, सब कुछ छोड़कर आते हैं वहाँ पर 10 लाख लोग, केवल दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस दिन जो दर्शन करता है उनका रथ यात्रा में बैठते समय उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनका सारा पाप नष्ट होता है, उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है और इस जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, तो आप दादर स्टेशन में खड़े होकर भीख मांग सकते हैं और वो पैसा लेकर जगन्नाथपुर जा सकते हैं। वर्स्ट कम टू वर्स्ट, बट यू हैव टू गो, बेग बोरो स्टील, बट यू हैव टू गो। नहीं तो क्या जीवन का लाभ क्या है? जीन पैंट और टी शर्ट पहनने के लिए थोड़ी जीवन दिया हमको, लड्डू खाने के लिए थोड़ी जीवन दिया है। ये जीवन दिया उनको मिलने के लिए, उनकी मुलाकात करने के लिए, और वो खड़े हैं जगन्नाथपुरी में। ऐसा नहीं कि आपको वो खड़े हैं इंद्रलोक में, वहाँ पर जाना है आपको, ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में है, एक एक राज्य महाराष्ट्र है, एक राज्य उड़ीसा है, उधर बैठे वो खड़े सॉरी बैठे थे, दर्शन दे रहे हैं आपको, और जाते ही प्रसाद खिलाते हैं। कोई आदमी भूखा नहीं लौटता है वहाँ पर, सबको प्रसाद मिलता है उनका, और प्रसाद खाना है और देखना है, बस दो ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। इतनी कृपा है उनकी, इसलिए वो कृपा का एडवर्टाइजमेंट थोड़ा भक्तिविधान सेंटर में भी हम लोग करते हैं। वो होता है ना कृपा का सेंटर है, वहाँ की जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर होती है कि भाई यहाँ पर भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे मिक्सर खरीदना है आपको, तो वो आदमी आता है, एजेंट आता है और आपको एक होता है उसके पास मिक्सर, बहुत बार यूज़ किया उसको, लेकिन उसका डेमो दिखाता है वो कैसे चलता है, ये क्या करता है, अच्छा ऐसे घुमाता है, फिर इसमें मसाला बनाना है, इसमें लस्सी बनाना है, इसके अंदर ये चटनी बनाना है, अच्छा वाह 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 ऐसा है क्या, और कितने का प्राइस है, हाँ अच्छा 4,000 में आ जाएगा, चलो ले लो और एक तुरंत खरीदो उसको। तो ये जो डेमो है उसका छोटे पैमाने पर, हाँ एडवर्टाइजमेंट 2 मिनट का वैसे होता है ना, वैसे यहाँ पर भक्ति वेदांत में उसी का डुप्लीकेट करते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं ये ऐसे ऐसे होता है, और उसके अंदर भी इतना आनंद आता है, तो वहाँ पर जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। और बार बार मैं दोहराना चाहता हूँ, ये कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है, ये सब आपके लिए है, ओनली फॉर यू ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जीवन के लिए इतना वरदान दिया गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिए वहाँ तक पहुँचिए, और भी इनकी अद्भुत कहानियाँ आपको एक एक कथा में बताते रहेंगे, खाली आपको याद रखना है कि मैंने क्या बताया, हाँ भूलने जाना है, क्योंकि याद करेंगे तो ही हृदय के पाप नष्ट हो जाएंगे, मनोरंजन के लिए सुनेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, श्रद्धा से और भक्ति भाव से सुनेंगे, चिंतन करेंगे उस पर, याद करेंगे, जाकर घर में बच्चों को बताएंगे, दोहराएंगे उसको, तो जाकर हृदय में बसे हुए जो पाप और दुख है वो नष्ट हो सकते हैं। और उसी नष्ट हुए हृदय में, जिसमें दुख नष्ट हो गए, भक्ति का दीपक जल सकता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। धन्यवाद सबका, हरे।